चलती है। कैसा लगा कल बाबा? बहुत अच्छा लगा। बस माताओं को कैसा लगा? नहीं कुछ और बताओ। बहुत अच्छा ही नहीं, कैसा लगा? अरे नहीं उत्तर कुछ और दो ना। प्यारा लगा, न्यारा भी लगा, न्यारा भी लगा। अच्छा पहले मुरली की मुख्य बातें रिपीट कर लें। याद है कल की मुरली? पहली पॉइंट संतुष्ट मणि। हम सब संतुष्ट मणियां हैं। देखो संसार में संतुष्टता के साथ मणि शब्द किसी ने नहीं जोड़ा। भगवान ने अपने बच्चों को मणि बनाया, संतुष्टता की भी मणियां। और कल एक और शब्द जोड़ दिया, नहीं लड़ियां तो बाद में मिलाएंगे। संतुष्ट मणि की शक्ति, ये सबसे पहली बार जोड़ा बाबा ने। अर्थात संतुष्टता में बहुत शक्ति है। कभी बाबा ने ये भी कहा, संतुष्ट मणियों का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। तो बहुत आवश्यक हो गया हम पूरी तरह संतुष्ट हो जाए, शांत। जो मिलना चाहिए था वो शांत, बस संतुष्ट हुए, हम संतुष्ट हुए। मैंने किसी को सिखाया आज, असंतोष तो बहुतों में रहता है ना। तो दिन में कई बार हम बाबा से इस तरह बातें करें कि बाबा आपको पाकर मैं आत्मा संतुष्ट हुई। कई बार करें, बाबा आपको पाकर हम तृप्त हुए। तो संतुष्टता बढ़ती जाएगी क्योंकि इसकी गति भी काफी सूक्ष्म है। भगवान इतना जोर देता है इस बात पर। तो मुख्य लक्ष्य यही है कि हमारी संकल्प शक्ति वेस्ट न हो। सबसे बड़ी चीज है, भाई थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के रखो, सबसे बड़ी चीज है संकल्प शक्ति। और अगर मनुष्य संतुष्ट हो जाता है क्या होता है? बहुत संकल्प चले जाते हैं ना। किसी का उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति ने यज्ञ को बहुत अच्छी स्मृत की जगह दी, बहुत बड़ी जगह उसके बाबा का, बहुत अच्छा रिट्रीट सेंटर बन गया। लेकिन वो किसी बात से नाराज हो गए, असंतुष्ट हो गए कि उन्हें पूछा नहीं गया कहीं। तो उनके भी बहुत संकल्प और जो निमित्त रहने हैं वो उसको मनाने में लगी हुई है, उनके भी बहुत संकल्प। और ऐसे में जो रूसने वाले लोग होते हैं ना, जिनको रूसने की आदत होती है, वो जल्दी मानते नहीं है। देखा बच्चों को, माताओं ने, माताओं को खूब अनुभव है, बच्चे रूस जाते हैं जल्दी नहीं मानते, तो उन्हें कुछ ज्यादा ही देना पड़ता है। पहले थोड़ा दे देते तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जब रूस गए तो फिर बहुत ज्यादा देना पड़ता है। असंतुष्टता एक अग्नि है जो आत्मा की शक्तियों को जलाती है। तो बाबा कल बार बार घूम घूम कर वही बात, संतुष्ट मणि बनो। और कभी कभी नहीं, फिर जोर था बाबा का कभी कभी पर, सदा। कभी कभी संतुष्टता साधनों पे आधारित होती है। ये चीज मिल गई, संतुष्ट हुए। ये इच्छा थी पूरी हो गई, संतुष्ट हुए। बाबा की मुरली सुनी, बहुत प्यार फील हुआ, संतुष्ट हुए। किसी ने घर में कुछ कह दिया, फिर गई। तो माताएं संतुष्ट हैं? बोलो। कुछ के चेहरे बता रहे वो नहीं है, बिल्कुल नहीं, चेहरे बता रहे। कुर्तों में आवाज देके उठा दो, नहीं चेहरे बता रहे हैं। संतुष्ट नहीं है, थोड़ा बोझ लिए हुए हैं सिर पर, बोझ बहुत बोझ है। सताया गया है माताओं को, किसने सताया, किसने सताया, पांचविकारों ने, अरे औरों ने भी सताया। पांचविकारों से तो बच गए। सुन लो एक कहानी, एक माँ की कहानी। उसको दो लड़कियां बड़ी, दोनों बहुत अच्छी, एक ने MBA कर लिया, एक ने शायद इंजीनियरिंग किया, दोनों बहुत अच्छी सर्विस में। एक लड़का 11वीं क्लास में, बुरे संग में, बुरे व्यसन, इंटरनेट देखना, खाने पीने पे झगड़ा करना, माँ डिप्रेशन में आ गई, फोन किया मुझे अभी। मैंने उससे हंसी की, मैंने कहा तुमने तो कहा था ना लड़का हो, लड़कियां अच्छी नहीं होती, अब देख लो कौन अच्छी है, सोच लो, माताएं बैठी है ना बहुत, लड़के अच्छी लड़कियां, हाँ क्या आनंद। अच्छे तो दोनों हैं, अब आजकल क्या है, युवक बुरे संग में आके बिगड़ जाते हैं। ये इंटरनेट भी तो एक ऐसी बुरी माया है, मोबाइल और इंटरनेट, जो बहुत युवकों को गलत राह पर ले जा रहा है। अब ये बेचारी, मैं तो बता नहीं सकता, पर उसकी दुखी हो गई, बाप दुखी, बाप की नहीं मानता, लड़ाई करता है, इंसल्ट करता है, तो देखो घर में अशांति हो गई ना, असंतोष फैल गया। अभी अकेली ज्ञान में, अकेली ज्ञान योग भी नहीं कर पा रही, तो ऐसी बहुत सारी चीजें परिवारों में असंतोष का कारण बनती हैं। हम इस बात में अपने को जरा आगे बढ़ाएं, माताएं जो असंतुष्ट हैं, जो खुश नहीं हैं, वो अपने को खुश करें। भाई मैं माताओं को कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाई नहीं, पर मेरे सामने दो चार माताएं मुझे दिखाई दे रही है जो भगवान को पाकर खुश नहीं हुई। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, निकालो अपने को इस दबाव से, ठीक कह रहा हूँ ना मैं, माताओं की इस तरह के दबाव है, बच्चों के दबाव, क्यों, क्योंकि बच्चों की बहुत प्यार से पालना की है ना, उनके लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया है जीवन का। माताओं को अगर तीन बच्चे हैं तो तीन को पालने में उनकी जान चली गई, और वो बच्चे अगर बुरा करें तो माताओं के दिल पर, मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन इससे बाहर निकल जाओ, कैसे, कैसे, नहीं बाबा को तो बना ले, पर वो भी तो हैं, बाबा को बच्चा बना ले तो ठीक था, आपने आपने बना लिया होगा, परंतु वो भी तो हैं जो परेशान कर रहे हैं। यहाँ सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, केवल वो आपके बच्चे ही नहीं हैं। चिंतन करें माताएं, वो अपने कर्मों का लंबा चौड़ा हिसाब किताब भी साथ लेकर आई हैं आत्माएं, है या नहीं। आपको केवल उन्हें अपना बच्चा समझ के दुखी हो रही ना, लेकिन उनके साथ उनके पाप और पुण्य भी चले आ रहे हैं। इसलिए सभी को, मैं माताओं को विशेष कह रहा हूँ, उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं। इसके बिना समस्याओं का आजकल कोई समाधान नहीं रहेगा। समस्याएं बढ़ती जा रही संसार में, मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। बाबा ने कौन सा वरदान दिया कल, नहीं एक वरदान दिया और, हाँ खुशी पर तो बोलो, खुश रहो, खुश, खुश किस्मत, खुश किस्मत, जो बहुत अच्छी किस्मत वाले होते हैं उनको कहा जाता है भाई बड़े खुश किस्मत हैं, बहुत अच्छी किस्मत है इनकी। तो देखो भगवान भी देखता होगा कि ये मेरे बच्चे बनकर भी खुश नहीं रहते, कितनी लज्जा आती होगी उसको, मैं सारे संसार को खुश करने वाला और मेरे बच्चे दुखी। हाँ अगर वो संसार में हो तो पड़ोसी कहेंगे ना पहले अपने बच्चों को तो खुश करो फिर हमसे बात करना, कहेंगे या नहीं। खुश रहना अपने हाथ में या दूसरों के हाथ में, जिसने अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे दी वो कभी खुश नहीं हो सकेंगे। संतुष्ट होना है। देखिए संतुष्टता की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई जा सकती है। कल बाबा ने भी कहा कि बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो ठीक है, उनको कठिन क्या है करना। दूसरों को संतुष्ट करना बहुत कठिन काम है ना, माताओं को खूब अनुभव है। एक एक बच्चे को खुश करना बहुत कठिन काम, संगठनों में एक दूसरे को संतुष्ट रखना थोड़ा कठिन काम। क्यों कठिन? क्योंकि मनुष्य के मन में एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं, स्वार्थ बहुत रहता है। आज मनुष्य की मांग बहुत है, खाली हो गई ना आत्माएं तो क्या मांग करती है, मुझे लोग सम्मान दें तो मैं खुश, मुझे लोग प्यार से बात करें तो मैं खुश, मुझे ये मनचाही वस्तु मिल जाए तो मैं खुश। तो मनुष्य साधनों में संतुष्टता ढूंढ रहा है, लेकिन साधनों में संतुष्टता नहीं है। बहुत अच्छा भोजन मिल गया, खुशी होगी थोड़ी देर, गले से नीचे उतरते सब माल बराबर, या पता रहता है पेट को रसूल ले आए हैं, गुलाब जामुन आए हैं, पेड़े आए हैं, अच्छे से पता रहता है, बस जीभ तक, उसके बाद सब बराबर है। क्या खाया, क्या सूखी रोटी खाई, वो सब बराबर है। संतुष्टता हम साधनों के आधार पर नहीं रखेंगे, बाबा के अनुभवों के आधार पर। सचमुच अगर कोई आत्मा संतुष्ट हो सकती है तब रियल उत्तर पर अब हम आ जाए। जब आत्मा को बाबा से सर्व खजाने प्राप्त हो जाए, असली संतुष्टता इसमें है। अगर हम बाबा से अच्छी प्राप्तियों का अनुभव नहीं करते तो आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, या नहीं यही बात। हम अमृत वेले न उठे, उठे तो हमारा योग अच्छा न हो, मुरली में हमें नींद आ जाए, तो आत्मा अंदर ही अंदर असंतुष्ट हो जाती है। तो हम बाबा से सब कुछ प्राप्त करने का लक्ष्य बनाएं। संगम युग अब बाबा से सब कुछ प्राप्त करने का युग है, गहराई से सबको चिंतन करना चाहिए। संगम युग, सोच लो भाग्य बांट रहा है भगवान, हम ले रहे हैं या नहीं, भाग्य बांट रहा है। कितना सुंदर समय है, किसी भी जन्म में हमें भाग्य की कमी नहीं पड़ेगी अगर हम बाबा से अच्छी तरह अपना भाग्य प्राप्त कर लें। सभी चिंतन करें, ये समय है स्वयं को संतुष्ट करने का। अगर असंतुष्ट न हुए द्वापर युग के बाद, फिर शांति की अग्नि अंदर ही अंदर, संतोष की अग्नि अंदर ही अंदर काम करेगी। तो सभी एक लिस्ट बनाएं अपने अपने को देखकर कि मुझे यहाँ भी संतुष्ट रहना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। एक आत्मा को मैंने देखा जन सरोवर में, यही 5 नंबर डाइनिंग हॉल में भोजन लेने आई, उसकी थाली में उस माता ने सब्जी थोड़ी ज्यादा डाल दी, इसने उससे वहीं लड़ाई शुरू कर दी, इतनी क्यों डाली है, मैं इतनी खाऊंगी क्या, तुम समझती नहीं हो, अरे क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। बेचारी माता तो डर गई, एकदम डर गई, पता नहीं कुछ हो न जाए अब, और वो टीचर अच्छी, लेकिन एक असंतोष, कहीं और से असंतुष्ट होके आई होगी तो गुस्सा सारा खाने पे माता जी को निकल गया। कभी कभी ऐसा देखते हैं कि किसी को सब्जी थोड़ी कम डाल दी तो वो परेशान, अरे भाई परेशान क्यों होते हो, कह दो डाल दो, वो ना करे तो परेशान हो ना, थोड़ी कम डाल दी तो परेशान। तो भोजन पर संतुष्टता, रहने खाने पीने सोने सब में संतुष्टता। देखो संतुष्ट आत्मा होगी तो यज्ञ का भोजन बहुत अच्छा लगेगा, संतुष्ट आत्मा नहीं होगी तो कहेगी लाल मिर्ची तो है ही नहीं, तेल बहुत कम है, कहेगी तेल ज्यादा है, होगा ना। हम देखते हैं ना गुजरात से बहुत लोग आते हैं, बेचारे अपने खेत ले लेकर आते हैं, या मजा नहीं आता, लाल मिर्ची नहीं है, तेल भी बहुत कम है, पता नहीं सूखा सूखा बन रहा है, तेल ज्यादा डालने तो अनेक परेशान होंगे, तेल बहुत डालते हो, खाया नहीं जाता, बनाने वाले क्या करें। संतुष्ट रहना पड़ता है ना। आप सो रहे हैं, आपका पड़ोसी खराटे ले रहा है, खराटों की समस्या मेरे पास बहुत आती है। कल भी एक बहन की आई कि हमारी दो टीचर के दूसरी जो बड़ी टीचर थी वो आई, तो मेरे से मिलने आई। मैंने कहा बहन जी रात को तो आप तबला ही बजा रही थी। वो तो सोचने लगी तबला, मैंने कहा बहुत तबला बज रहा था। तो दूसरी टीचर हंसने लगी, तो खराटे बहुत ले रही थी बहन जी, मुझे सोने नहीं दिया। तो खराटे ऐसी चीज जिस पर किसी का अधिकार नहीं। यह है सो गए, अब हम क्या कर रहे हैं क्या पता किसी को। हाँ अभी तो संतुष्ट रहना पड़ेगा या नहीं, सोना पड़ेगा ही। हम मधुबन में थे, एक ही कमरे में 18 साल रहे, मैं 18 साल रहा एक कमरे में। हम पांच लोग इकट्ठा रहते थे, मेरे पास एक भाई रहते थे, बिल्कुल खाट जुड़ी हुई, पांच रहेंगे एक कमरे में खाट जुड़ी, उसके पैर मेरे पैर से टकराते थे, ऐसे सोते थे, उसको खराटे बोलते थे। रात को मेरी नींद खुलती थी ना, तो मैं क्या करता था, खराटे ले रहा तो उसके पैर में पैर मार देता था, तो वो जगेगा, करवट बदलेगा, खराटे बंद हो जाएंगे। तो मनुष्य को संतुष्टता रखनी पड़ती है ना। अगर रात को नींद छिट गई और खराटे वालों के लिए चिंतन शुरू हो गया कि क्या जीवन है, इसे कैसे चलेगा, हम तो यहाँ के परेशान हो गए, तो मजा आएगा मधुबन में? बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमें संतुष्ट रहना है। संतुष्ट होंगे तो सो जाएंगे, सो जाएंगे ना। संतुष्ट होंगे तो खराटे को भी समझेंगे, ट्यून बज रही है सो जाओ। मैं ऐसा सोचता था, ट्यून बज रही है, अगर गीत की ट्यून बज रही हो तो हम शिकायत करते हैं क्या, क्यों बज रही है, सो जाते हैं ना। एक मन बनाया हुआ है ना, ट्यून बज रही है, मन बना लो ये भी ट्यून है। तो अपने को संतुष्ट रखना ही पड़ेगा। कल की मुरली में तीन टॉपिक थे, दूसरा विजय रतन और तीसरा फॉलो फादर। फोर पॉइंट्स तो बीच बीच में बताई। सेंटर्स को निर्विघन रहने के लिए फिर से बाबा ने कहा, वो भी बहुत सुंदर बात है। विजयी रतन ऐसा दीदी होने की बार बार प्रैक्टिस करो, इससे वास्तविक संतुष्ट आएगी। कर देना चाहिए सभी को कि बीच बीच में इतना सा नियम बना लो, कोई भी काम शुरू करेंगे ऐसा दीदी होने का अभ्यास कर लेंगे 10-20 सेकेंड। माताएं मान लो सब्जी काटने गई, ऐसा दीदी होने के अभ्यास से शुरू करें। रोटी में गई फिर वहाँ शुरू करें, भोजन खाने खिलाने गई वहाँ शुरू करें, अपने कपड़े धोने हैं वहाँ शुरू करें, ऐसे शुरू करें। ये चीजें हमारी साधनाएं हैं और ये साधनाओं से ही सफल होती हैं। देखो कि छोटी सी ऐसा दीदी होना हमें से किसी के लिए भी कठिन बात नहीं है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में हूँ, यहाँ बैठी हूँ, इस देह में अवतरित हुई हूँ, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। कई सुंदर संकल्प रखकर हम स्वयं को देह से न्यारा अनुभव कर सकते हैं, परंतु करना पड़ेगा। अगर हम अभ्यास नहीं करते, अगर हम साधनाएं नहीं करते, तो हमारे ये छोटा सा अभ्यास भी पीछे छूट जाता है, ये हमें कठिन लगता है। और सभी याद रखेंगे इस अभ्यास से अनेक समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली काम होगा। विजय रतन बाबा ने कल भी हाथ उठवाया, उसी से कहा कि लड़िया बना देंगे, लेकिन साथ में क्या जोड़ा आपने, कैच किया संपन्न बनो। आप संपन्न बनो तो बाबा आपको सीट देंगे। तो विजय रतन केवल हाथ उठाने से नहीं बन जाएंगे कि हम भी आएंगे, संपन्न बनेंगे, माया को जीतेंगे। विजय रतन का अर्थ ही है माया पर विजय। माया को संपूर्ण रूप से जीतेंगे तो विजय माला में आएंगे। कितना योग चाहिए इसके लिए, माया को जीतने के लिए कितना योग चाहिए हाँ ऐसा सोच लें, 4 घंटे योग की शक्ति माया को जीतने का बल देगी और 4 घंटे योग की शक्ति हमारे विकर्म विनाश करेगी। बढ़ाएं इस रेस को, 4 घंटे से आगे ले चले, एक दिन में नहीं होगा, पर अगर हम लक्ष्य बनाएं तो हम विजयी बन सकते हैं। विजय रतन बनने के लिए और क्या चाहिए, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक अलग सा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। विजय रतन बनने के लिए प्योरिटी बहुत सुंदर, सभी को जानना चाहिए, अष्ट रतन संपूर्ण पवित्र, कितने पवित्र के अपवित्रता की अविद्या। बाबा ने उदाहरण दिया, 5 साल का बच्चा, उसे कुछ पता नहीं है पवित्रता क्या होती है, अस्रतन माना इम्प्योरिटी से इनोसेंट, कोई ज्ञान नहीं इम्प्योरिटी का, संपूर्ण पावन हो गई आत्मा। सो माया पर विजय, एक संकल्प हुआ विजय हुई, और विजय पाते पाते संपूर्ण विजय, उसके इफेक्ट से परे। एक उदाहरण ले ले, क्रोध, क्रोध पर संपूर्ण विजय, पहले क्रोध उठेगा हम उसे जीतेंगे, भाई 10 सेकंड क्रोध आ गया हमने कंट्रोल कर लिया, जीत लिया, ये भी विजय है। फिर होगा 5 सेकंड ही उठा हमने जीत लिया, फिर होगा अंदर में उठा हमने जीत लिया, और फिर होगा उठा ही नहीं, तो संपूर्ण बीज सहित समाप्त कर दिया हमने, ये होगी विजय। और सबसे बड़ी विजय कौन से विकार को जीतने से होगी, देह अभिमान नहीं, मोह, मोह, मोह की गति अति सूक्ष्म है। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो कहते थे हमारा किसी से मोह नहीं, और जब परिस्थिति आई सबसे ज्यादा मोह उनको ही था, उन्हें पता चला कि मोह तो बहुत सूक्ष्म चीज है, छोड़ देने से भी मोह समाप्त नहीं होता, क्योंकि मैं तो बच्चों को छोड़ देती हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं बच्चों से, मोह खत्म होगा, वहां से खत्म होगा, दूसरी जगह जुट जाएगा। मेरे को ऐसी कई बहने माताएं मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत बड़े बड़े त्याग किए, 2 बच्चे थे छोटे उनको छोड़ के समर्पित हो गई, 4 बच्चे थे उनको छोड़ के समर्पित हो गई, लेकिन इन्होंने अपने मोह को काटा, जैसे काटा, बच्चे याद करते थे माँ को, उसका असर माँ से आता था, उसको उदासी होती थी, उसकी खुशी नष्ट हो जाती थी, धीरे धीरे उसने उन पर विजय प्राप्त की, तो और चीजों में मोह हो गया, मोह ट्रांसफर होता है, बच्चों से हो गया, साथियों से हो गया, बच्चों का प्यार जो था भूलने लगा, लेकिन ये मोहजीत बनने की विधि नहीं है। स्मृति स्वरूप होते होते धीरे धीरे मोह छूटेगा, जितना मोह हमारा अपने शरीर से है उतना ही बाकी चीजों पे फैलता जाता है। शरीर से मोह छूटने की विधि है अशरीरीपन, सेकंड में जो देवान से न्यारे हो जाएं उनका मोह छूटता जाएगा, समझ रही ना माताएं, मोह छोड़ना स्थूल रूप की बात नहीं है, सूक्ष्म गहरी जड़े इसकी, केवल माताओं के पास नहीं सबके पास, लोग सोचते माताओं को भी बहुत मोह होता है, ऐसा नहीं, मोह सबके पास है, जो कुमार हैं कुमारी हैं उनके पास भी है, जिनका जिनको लगता है हमारा इस दुनिया में कोई नहीं उनके पास भी है, कहीं भी हमारे संकल्प चलना, कहीं भी आकर्षण होना, कहीं भी आसक्तियां होना, ये सब मोह के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब संसार का विनाश होगा तो मोह ही मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक स्थिति लाएगा, क्योंकि सब कुछ नष्ट होगा ना, सब कुछ, केवल मनुष्य नहीं, साधन, पैसा, मकान, प्रॉपर्टी सब जाएगा, और वो मन उसने कमाया है, उसमें उसकी आसक्ति है ये मेरा है, तो उसको बहुत कष्ट होगा। तो मेरा ये शब्द मोह पैदा करता है, इससे भी हमें मुक्त होना है, विजयी बनना है, तो टोटल हम इसके लिए अगर हम विजय रतन बनना चाहते हैं और संतुष्ट मणि होना चाहते हैं तो मैं एक छोटी सी विधि आपके सामने रखता हूँ। सवेरे उठते ही कुछ दिन तक आप अपने सच्चे दिल से ये संकल्प करना, मैं विजय रतन हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ। पांच पांच बार, मैं विजय रतन हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं विजय रतन हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ। मैंने क्लासेज में एक बात कही है, आप सबको फिर कह देता हूँ। कोई भी ऐसा लक्ष्य हम जीवन का बनाए उसको कागज पर लिखो, सात बार लिखो। जो भी आप लक्ष्य बनाना चाहे, माताओं को भी मैं कहूँगा, मान लो आपको लगता है मेरे अंदर मोह बहुत है, आप कागज पर लिखो मैं मोह जीत हूँ। आपको लगता है मुझे बहुत बंधन है, आप कागज पर लिखो मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। सात बार, तो क्या होगा? मैं विजयी रतन हूँ, सात बार लिखो, मैं संतुष्ट मणि हूँ। क्या होगा? ध्यान से सुन लें। आपने सात बार लिखा, वो चीज अंदर चली गई, तो आपका ब्रेन, समझते मानते हैं ब्रेन, ये मस्तिष्क, उस चीज को प्राप्त कराने में अपनी संपूर्ण शक्तियां लगा देगा। ब्रेन हमारे कमांड्स को स्वीकार कर लेता, ब्रेन की बात मैं कर रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड की नहीं। हमारा जो ब्रेन है, हम जो उसे आज्ञा देते हैं वो उसे स्वीकार करके उसको पूर्ण करने में लग जाता है। और किसी ने मान लिया हो, मैं तो बहुत परेशान हूँ, देखो कुछ गलती करते हैं ना लोग, मैं तो बहुत परेशान हूँ, तो ब्रेन आपको परेशान करने में ही लगा रहेगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, सात बार लिख दो, आपका ब्रेन आपको संपूर्ण खुशी प्रदान करने में लग जाएगा। इस फिलोसॉफी को, इस थ्योरी को सभी ध्यान में रखेंगे। लिखें आप सात सात बार, लिखें कोई विशेष चीज हो तो सात दिन तक लिखें, बहुत अच्छा होगा। तीसरी बात थी फॉलो फादर, बाबा ने याद दिलाया, पहले भी बाबा के आठ कदम सुनाए थे, याद है? बहुत पहले की मुरलियां हैं जिसमें बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ की आठ बातें सुनाई थी, मैं आपको सुना देता हूँ। जो भी आप में से उस पर काम करना चाहे वो करे। पहला कदम था कौन सा होगा? समर्पणता। पहला कदम था समर्पणता। आप उसे कैसे फॉलो करेंगे? बहुत सारे कुमारों ने तो समर्पित कर दिया अपने को, कन्याएं भी समर्पित कर देती हैं। आप माताएं कैसे फॉलो करेंगे? फॉलो करना समझती है ना, जैसा उसने किया वैसे हम करें, तो कैसे आप समर्पित करेंगे? आप कहेंगे हम कैसे घर छोड़े, सारी संपत्ति यज्ञ में लगा दे, फिर हमारा क्या हाल होगा? क्या करेंगे? बुद्धि से, दिल से संकल्प कर दो, बाबा मेरा सब कुछ तेरा। बहुत दिल से, दिल की गहराई से, ये मेरा नहीं तो मेरा घर बाबा का यज्ञ है, और अपने परिवार का हेड बाबा को बना दो। जो ये करें, समर्पण का पहला कदम। दूसरा कदम सर्वस्व त्यागी, ब्रह्मा बाबा की त्याग की तो पूरी कहानी है, बहुत बड़ा त्याग। बाबा के पास बच्चे बहुत चीजें लाते थे ना, कोई अच्छा स्वेटर बना के लाई माता, बाबा मैंने अपने हाथ से बुना है, कोई बाबा के कमरे के लिए दरी लाया। बाबा का कमरा बहुत साधारण था, पानी गिरता रहता था दीवारों में भी, पहले वो चूने की बनती थी, बजरी और चूना वो गिरती रहती थी, सीमेंट की बाद में बनी, और आधा था कमरा जो अभी है ना बाबा का मधुबन में, उसका आधा आधा ये फिर बढ़ाया क्योंकि सब बैठने आने लगे, पीछे ये जहाँ जूते चप्पल निकालते हैं वो बरामदा था खुला, तीन तीन फुट की दीवार बाहर, बस खुला बरामदा था। ये बाबा का कमरा था, गर्मी में बाबा उस बरामदे में सोते थे मच्छरदानी में। तो हम जब आए पहली बार तो बाबा के सामने ही हमें कमरा मिला, ऊपर हवाई महल कहते हैं ना, जानते होंगे आप, पहाड़ी पर ज्ञानेश्वर भाई का कमरा है आजकल, वो हमें मिला। तो हमें बड़ा मजा आता था, रात को बाहर बैठ जाते थे, छोटे तो थे, तो बाबा मच्छरदानी में बैठा है योग में, ऊपर एक लाल बल्ब लगा हुआ है, हम देखते ही रहते थे। सवेरे हम भी जल्दी उठ जाते थे और जब उठते थे फिर देखते थे बाबा बैठा है मच्छरदानी में। हमें बड़ा अच्छा लगता था कि हमारे बाद सोए, हमसे पहले उठ गए। बहुत बड़ा त्याग बाबा का, अपने लिए कुछ भी नहीं, सब बच्चों के लिए। दूसरा कदम, तीसरा कदम, बाबा के कुछ गुणों की बाबा ने चर्चा की थी, उसमें एक था सहनशीलता। सहन भी बाबा ने बहुत किया, ऐसे हम न समझे बाबा बड़ा था, जितना मालिक था तो उसे सहन नहीं करना पड़ा। जो जितना बड़ा होता है, माताएं भी जानती है ना, घर में बच्चों की सारी बात सुननी पड़ती है ना, वो भी माता पिता थे, बहुत कुछ सुनना पड़ता था, सहन करना पड़ता था, लेकिन सहन करते थे। और सहन करने के साथ एक दूसरे गुण की धारणा बाबा के पास बहुत ज्यादा थी, नहीं एक और अच्छी चीज इसी के साथ, सबके लिए बहुत शुभ भावना और बहुत प्यार। मेरे बच्चे हैं कोई बात नहीं, बाबा से तो लड़ जाते थे ना कोई, बाबा को बुरा बोल के चले जाते थे, ऐसा नहीं कि सब नहीं होता था। बाबा बहुत प्यार, और जैसे बच्चों की बात अंदर रखी नहीं, जो माता पिता है लौकिक में यहाँ बैठे वो ये सब जानते हैं ना, बच्चे कैसा व्यवहार करें माँ बाप फिर भी उनके लिए क्या रखते हैं, प्यार और शुभ भावना। वो प्रैक्टिकल में बाबा के पास थी, जैसे वो सबका माता पिता था। और आगे चले, बाबा की बहुत बड़ी धारणा थी निरहंकारिता, मैंपन का त्याग, संपूर्ण निरहंकारी। बाबा इतने निरहंकारी बन गए कि बाबा को देखकर लोगों को लगता था भोलानाथ है, बाबा को कुछ भी नहीं आता, थे सबसे अधिक बुद्धिमान, पहले नंबर की आत्मा है ना, सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक शक्तिशाली। और अगली धारणा थी बाबा की बहुत बहुत प्योरिटी, सबके लिए बहुत सुंदर दृष्टि, बिल्कुल अलौकिक दृष्टि, सब तरह की आत्माएं मिलने आती थी। आप जानते हैं आर्य समाजियों का विरोध बहुत था जब बाबा थे, तो कई आर्य समाजी ब्राह्मण बनकर ब्रह्मा कुमार बनकर आते थे बाबा के पास, और बाबा की जैसी परीक्षा भी लेते थे। बहुत ज्यादा प्योरिटी, जब तक कोई आर्य समाजी बाबा के पास नहीं आया तब तक तो वो बाबा को गाली देता रहा, लेकिन जिस दिन वो बाबा के सामने आ गया क्या हुआ होगा, सिर झुका दिया, सचमुच इनका ये बाबा, वो इनका बाबा कहते थे ना, इनका ये बाबा बहुत महान है। एक आर्य समाजी आया, बाबा का जो फोटो है ना, बाबा बैठा है योग में, बैठा हुआ फोटो, उसको देखता ही रहा देखता ही रहा। उसे बहन ने पूछा क्या देख रहे हो, कि बाबा के चित्र में भी एक चीज दिखाई दे रही है, हमने महान पुरुष तो बहुत देखे लेकिन ऐसा रॉयल पुरुष कोई नहीं देखा। तो बाबा के अंदर बहुत प्यार, बहुत श्रेष्ठ भावनाएं, सब मेरे बच्चे हैं, सब ठीक हो जाएंगे, सब समझ जाएंगे, पहचान लेंगे, ये बाबा की धारणाएं थी। बहुत सुंदर निर्भयता, बहुत ज्यादा। और भी कुछ किसी को क्या लगता है, एक बात और, हाँ दो बात और, दो बात नहीं, वो तो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी तीन में तो सब आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में महान तपस्वी और अचल अडोल। जो परीक्षाएं बाबा के सामने आई उसकी आप सभी लोग कल्पना नहीं कर सकते। आप सोचो आपके परिवार में जिसे तीन लोग रहते हो, पैसा न रहे, खाने को कुछ न रहे, क्या हाल होगा? समझ सकते हैं ना? बाबा के परिवार में 380 लोग, खाने को कुछ नहीं, और बच्चे जाने लगे, भागंती जिसको बाबा कहते हैं ना, अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे चलने लगे, खाने को कुछ नहीं, बाबा रोके भी कैसे होने, बीमार हो रहे हैं आपों में, सर्दी पड़ रही है, रोज मौसम हो गए, दवाई नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, तो बाबा मालिक है, जिम्मेदार है, फील होगा ना उसके माँ बाप को। बाबा का चेहरा सूख गया था, वगैरह तो आज कोई दो चार दिन नहीं चला, सालों साल चला, सालों साल। ऐसी महान परीक्षा देकर बाबा जैसे तप कर निखर गए और पावरफुल हो गए। तो उसने अचल अडोल स्थिति, बहुत ज्यादा ईश्वरीय नशा, भविष्य का नशा, शिव बाबा पर बहुत ज्यादा विश्वास, ये सब बाबा के जीवन में था। देखो हमेशा ध्यान रखना है, इस मार्ग पर हम चले हैं, उस मार्ग पर हमें परीक्षाएं देनी पड़ेंगी या नहीं? भक्ति में भी है, परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अगर महान प्राप्ति करनी है तो परीक्षाओं के लिए तैयार होना पड़ेगा। आजकल बाबा के बहुत बच्चों में जरा सी परीक्षा आ जाए और बाबा में संशय, तो ये ढीली आत्माओं का लक्षण है, कमजोर आत्माओं का लक्षण है। और बाबा की आखिरी बात थी तपस्वी, अंत तक बाबा 68 पूरा साल, पूरा 68 का साल बाबा निरंतर योग युक्त रहे। समझे आप, निरंतर अंतर ही नहीं, 5 सेकंड भी अलग नहीं, और उससे पहले उस स्थिति को पाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। निरंतर योग एक दिन में तो नहीं हो जाता ना किसी का भी। एक अच्छी साधनाएं बाबा ने अपने जीवन में की, तपस्या की, इसलिए ये स्थिति हो गई थी अंत में कि बाबा के पास जो भी जाए डीप साइलेंस, बात करने जाते थे भूल जाते थे, डीप साइलेंस में पहुंच जाते थे। ऐसे रेडी होने का, योग युक्त होने का, समान में रहने का, भविष्य का नशा, ये सब तपस्या बाबा की बहुत ज्यादा थी। इन सब को हमें फॉलो करना है। ये बाबा के 8-10 कदम हो गए, इन पर सभी गहराई से चिंतन करेंगे, ठीक है? तो कल की मुरली से अवश्य चीज आप अपने अंदर ले लें, ये हमें करना है, ठीक है? आओ भाई, ब्रह्मा बाबा की बनाई ना संतुष्ट मणि की छोटी सी कविता सुन लें आप, योग इसी में हो जाएगा या कविता है? हो जाएगा। चलो भाई दे दो इन्हें माइक, इधर आ जाओ। सब अपने अंदर कोई सुंदर संकल्प भी करेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूँ, विजय रतन हूँ, ये अच्छा अभ्यास करना है सभी को।